नमस्कार, ब्रह्म कुमारी इसके फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह हमारी लाइव प्रस्तुति है। नाम है इसका बी द चेंज सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि और लगभग पिछले 3 महीने से हम हर दिन आपसे मुलाकात कर रहे हैं और ये छोटी सी पहल यही रही है कि ये जो चैलेंजिंग टाइम्स है, डिफिकल्ट टाइम्स है, कुछ ऐसे समय है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। इस समय के बीच से हम सभी गुजर रहे हैं। इस बदलाव के वक्त में अपने आप को बदलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुश्किल घड़ियां हैं। अगर हम नहीं बदलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है हमारे लिए। ऐसे में हम छोटे मोटे बदलाव कर ही रहे हैं। कुछ लोग मास्क पहन रहे हैं, कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग दोनों फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग घर पे रह के काम कर रहे हैं। ऐसे अनेकों बदलाव हमने फिजिकल लेवल पे लाए हैं, मगर अंदरूनी लेवल पे भी हमने कुछ बदलाव भी लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, और वो भी हमें से कुछ लोग देरी से सही करने लगे हैं। हम अपनी दिनचर्या को सेट कर रहे हैं, समय पर सो रहे हैं, अपने स्क्रीन टाइम पर ध्यान दे रहे हैं, अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के बारे में सोच रहे हैं, वक्त पर खा पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ कर रहे हैं। तो चलिए, इसी बदलाव के दौर में हम एक पॉजिटिव चेंज की तरफ बढ़ते हैं। और ब्रह्म कुमारी की कोशिश रही है कि इन बदलावों के समय में, ये जो बदलता समय है, ऐसे समय पर अगर हम आपको इमोशनल सपोर्ट, स्पिरिचुअल गाइडेंस और विजडम ऑफर कर सकें, ताकि आप इस बदलाव में आसानी से नेविगेट कर सकें। हर दिन हमारे साथ हमारे सफर पर ब्रह्मा कुमारी इसके वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनें जुड़ते हैं, जो मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन हैं। वो हमें गाइडेंस ऑफर करते हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अगर आपको भी कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम लाइव है। तो सोशल मीडिया पर जहां पर भी, यूट्यूब या फेसबुक, किसी भी हैंडल पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, वहां पर अपने सवालों को टाइप इन कीजिए और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वहां से हम फीड्स पे आपके क्वेश्चंस लेंगे और आज के हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन से उन प्रश्नों का समाधान लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई प्रश्न नहीं है, बट अगर आप सिर्फ हमें एक शाउट आउट देना चाहते हैं, या फिर आप ये बताना चाहते हैं कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही मास्टर ऑफ मेडिटेशन है जिन्होंने अनेकों दशकों तक ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़कर ब्रह्म कुमारी की सेवाओं को आगे बढ़ाने में निरंतर योगदान दिया है। हमारे साथ ब्रह्म कुमारी वीणा दीदी जी हैं, जो सिरसी कर्नाटक से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। ब्रह्म कुमारी के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटर विंग के वो एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है जिनके मार्गदर्शन में हजारों लोगों ने आध्यात्म के राह पर अपने जीवन को सहज और सहल बनाने की कोशिश की है। आइए दीदी जी से बातचीत करते हैं। वीणा दीदी जी, स्वागत है आपका।
ओम शांति।
दीदी, बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो सवाल पूछते हैं। हर दिन हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सवाल हम लें, बट हर दिन ये होता है कि एक ही घंटे के कार्यक्रम में कुछ दोस्तों के सवाल रह ही जाते हैं। तो कुछ सवाल कल के दोस्तों के भी हैं जो मैं ले लेना चाहता हूं, मगर आज हमारे साथ कुछ दोस्त हैं जो ऑलरेडी साथ में जुड़े हैं और वो स्क्रीन पर हमें अपने फीडबैक्स भी दे रहे हैं। मनीषा जी यूट्यूब से जुड़े हैं और वो बोलते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस। वी फील ब्लेस्ड दैट इन दिस नेगेटिव एनवायरमेंट ब्रह्मा कुमारीज आर सेंडिंग अस पॉजिटिव वाइब्स। थैंक यू मनीषा जी, हमारी कोशिश यही रही है कि अगर आप कुछ पूछ सकते हैं, आपको कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है, तो वो चीज हम आपको ले सकें। दीदी, पहला प्रश्न मैं पूछ लेना चाहता हूं। हिमांशु कुमार नायक जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने प्रश्न पूछा, इफ डेस्टिनी इज डिटरमाइंड बाय अवर ओन वर्क, देन व्हाट इज द रूल्स ऑफ गॉड देयर। वो पूछते हैं कि अगर हम अपने कर्म से ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, हमारी डेस्टिनी बनती है, तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता है, भगवान का क्या रोल रह जाता है हमारे जीवन में। ऐसा हिमांशु जी पूछते हैं।
हिमांशु जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। दुनिया में बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि जब कर्म हम करते हैं, कर्म का फल हमें मिलता है, हमारे अच्छे व बुरे कर्म से ही हम चलते हैं, इसी से भाग्य बनता है, तो भगवान की क्या जरूरी है या जरूरत है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, कर्म तो हम करते ही है, लेकिन कर्म अच्छे करने की जो ताकत है, जिसको हम श्रेष्ठ कर्म सुकर्म करने की ताकत कहते हैं, वो ताकत मिलती है हमें भगवान से। जब हमारे सामने कर्म करने का चॉइस होता है, हम अच्छे मार्ग पर चले या बुरे मार्ग पर, दुविधा में जब हम फंस जाते हैं, तो उस दुविधा से बाहर निकलने का जो रास्ता है, भगवान के दिए हुए शक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगर हम भगवान से जुड़े नहीं है, तो हमारे मन के अंदर अगर कोई वीकनेस है, उसी के अनुसार हम कर्म कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं। इसलिए जो भी हम कर्म करें, लेकिन कर्म में अच्छा है या बुरा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका सही मायने में निर्णय लेना और उस रास्ते पे चलने की जो ताकत है वो हमें भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है। कर्म भले हम करते हैं, लेकिन कर्म के रास्ते चलने की जो ताकत है या मनोबल है वो भगवान के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। मैं समझती हूँ हिमांशु जी, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कर्म तो हम ही करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने की जो प्रेरणा और ताकत है वो भगवान के द्वारा ही प्राप्त होते हैं।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि श्रेष्ठ कर्म तो हम करते हैं पर उसकी प्रेरणा भगवान से मिलती है, वो हमें सही मार्गदर्शन दे सकता है और इसके कारण हम अपने काम को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और गोपाल जी YouTube पर लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम को और वो प्रश्न पूछते हैं, हाउ कैन वी सेंड पॉजिटिव वाइब्स एंड हाउ टू मेडिटेट कंटिन्यूअसली, प्लीज एक्सप्लेन कर्मा फिलोसफी इन सिंपल वर्ड्स। मैं समझता हूँ ये थोड़ा मिलता जुलता सवाल है जो हिमांशु जी पूछ रहे थे कर्मा के बारे में, और साथ में ये पूछते हैं कि हम कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करते रहें और पॉजिटिव वाइब्स भेजते रहें, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा गोपाल पूछते हैं।
जी बहुत अच्छा प्रश्न है गोपाल जी, आपने जो ये प्रश्न उठाया कि हम सोचते हैं सवेरे उठकर भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे और रात को एक बार जोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आपने ये जो प्रश्न उठाया, नहीं दिन भर भी हम मेडिटेशन करें, इसी के लिए तो कर्मयोग का गायन है। तो हम जो भी कर्म करते हैं हम सोचे कि हमारे साथ भगवान है, जो भी हम कर्म या ड्यूटी जो हमें मिली हुई है वो हम सोचे कि भगवान के द्वारा मिली हुई है, और हम जो कर्म करते हैं उसके साथ हम योग को ऐड करें, बैठ के करने का जब समय मिले, लेकिन काम करते समय भी अगर हम भगवान को साथी बना के रखते हैं, जो आप कह रहे थे कि कर्म की फिलॉसफी के बारे में आप कह रहे थे, लेकिन कर्म का बीज तो संकल्प है ना, संकल्प जैसे हम करते हैं एस यू थिंक सोशल यू बिकम, हमने सुना है, तो हमारे संकल्पों में जो बदलाव आएगा वो ही दुनिया के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन बन जाएगा। कई बार हम बोलते बहुत अच्छे हैं, दिखाते बहुत अच्छे हैं, लेकिन मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं या वेस्ट थॉट्स होते हैं या बुरे थॉट्स होते हैं, उन विचारों में अगर अच्छाई हम रख सके, किसी व्यक्ति को देख के हमारे अंदर नेगेटिविटी ना आए, उसके लिए हम सोचे कि अंदर जो दुनिया में है वो भगवान की एक रचना है, भगवान का बच्चा है, जब ये हम सोचते हैं तो हमारे अंदर किसी के प्रति भी नफरत घृणा या ऐसी कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं आ सकते, हमको वाइब्रेशन फैलाना नहीं पड़ता, जो सोचते हैं ना वो वाइब्रेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हमारे सोच को जब हम बदलेंगे और हर कर्म करते समय हम अपने साथी भगवान को बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली साथ में मेडिटेशन और कर्म साथ साथ चलेगा।
बहुत ही अच्छी बात आपने बताई दीदी कि ये अगर हम अच्छा करते हैं, कर्म योग के बारे में जो कहा गया है कि हम हर कर्म को करते हुए चीजों को करें, तो वैसे ही मेडिटेशन को भी हर काम को करते हुए किया जा सकता है, आपने बताया। मनीषा जी का प्रश्न है, मनीषा जी जो अभी अभी कमेंट दे रहे थे हमें फीडबैक, पूछते हैं, माई क्वेश्चन इज टू यू दैट आई लाइक टू डू सेल्फ टॉक्स, आई डू सेल्फ टॉक्स एंड सो मेनी थॉट्स कम टू माई माइंड एंड यू आर अवेलेबल टू आंसर आवर क्वेरी, बट हाउ कैन आई स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन विथ गॉड। मनीषा जी कहते हैं कि मैं सेल्फ टॉक करती हूँ, मैं अपने आप के साथ बातचीत तो करती हूँ और बहुत सारे विचार मेरे मन में आते हैं, आप चूंकि हमारे सामने उत्तर देने के लिए अवेलेबल हैं, तो पूछते हैं कि मैं ईश्वर के साथ एक कॉन्वर्जेशन कैसे शुरू कर सकती हूँ। सेल्फ टॉक तो ठीक है अपने आप से बोलना, बट ईश्वर के साथ बातचीत कैसे शुरू की जाए, पूछते हैं मनीषा।
जैसे आप अपने आप से बातें करते हैं मनीषा जी, आप वैसे भगवान से भी बातें कर सकते हैं। पहले हम भगवान को अपना पिता या साथी फ्रेंड मान लें, जैसे फ्रेंड के सामने, पापा के सामने या मम्मी के सामने खुल के बातें करते हैं, वैसे दिल की बातें हम भगवान के साथ शेयर करना शुरू करें। जैसे सेल्फ टॉक में हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, वैसे हम बातें करते करते ही भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। कहते हैं बातें भूतों को भगा देती है, अगर भगवान के साथ हम बातें करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले तो हमको लगेगा ये वन वे है, लेकिन धीरे धीरे ये बातें इतनी स्पष्ट होती जाएगी, हमारी और भगवान की वेवलेंथ मिलना शुरू हो जाएगा। और जब वेवलेंथ मिलना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें हमारी बातों का रिस्पॉन्स भी भगवान के द्वारा मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा सेल्फ टॉक, आपने जो कहा, इसको थोड़ा सा गहराई में जाके सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाएंगे तो आप भगवान के साथ बातें करते हुए बहुत अपने आप को रिलैक्स भी महसूस करेंगे, रिचार्ज भी महसूस करेंगे। तो ऐसे ही शुरू कर दीजिए, उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम अपने आप से बातें करते हैं, पिता परमात्मा को सामने रखते हुए उनके साथ भी प्यार से दिल की बातें सच्चाई से शुरू कर दीजिए। देखिए मन भगवान से इतनी अच्छी तरह से जुड़ जाता है और मन में सुकून का भी महसूस हम कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया उस उत्तर के लिए। हमारे साथ धर्म नारायण दुबे जी हैं और धर्म नारायण जी फेसबुक से हमारे साथ प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और वो प्रश्न पूछते हैं। ओम शांति वीना दीदी, वेलकम। आई एम अ लॉयर एट द सुप्रीम कोर्ट एंड ड्यू टू कोरोना फियर अबाउट सिंस मार्च 2020 आई हैव नो वर्क, सो आई एम फीलिंग डार्कनेस इन फ्यूचर, काइंडली एडवाइज मी फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। धर्म नारायण जी पूछते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर के रूप में सेवाएं देते हैं और जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है मार्च 2020 से ज्यादा कुछ काम नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो अपने फ्यूचर को डार्कनेस में देखते हैं। तो ऐसे में पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आप कुछ एडवाइस करें, ऐसा ये पूछते हैं धर्म नारायण जी।
धर्म नारायण भाई जी, आपने जो प्रश्न पूछा, कईयों के मन की बात आपने खुल के हमारे सामने रख दिया। सच्चाई ये है कि घर बैठे बैठे हम थक गए हैं या सोचते शायद हमारा भविष्य नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जिंदगी में हम सभी सरप्राइज को लाइक करते हैं, है ना। अगर कोई हमें सरप्राइज कर दे, कुछ दे दे, तो हमारा दिन बन जाता है, जीवन बन जाता है। तो क्यों ना ही हम ये जो समय चल रहा है, ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसको एक भगवान की सरप्राइज या हम कहें कि कुदरत की सरप्राइज है ये, ऐसे अगर हम मान के चलेंगे तो हम इसे भी एंजॉय कर सकते हैं। और बात रही, आप वकील हैं, आपके पास केसेस तो आने ही है। जब कोर्स नॉर्मली हो जाएंगे तो आपको ना फुर्सत नहीं मिलेगी, आपको श्वास लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी, इतने सारे केसेस जरूर आ जाएंगे जो पेंडिंग केसेस है। लेकिन तब तक के लिए अगर अपने आप को आप स्ट्रांग बनाएंगे, अपने आप के लिए आप जज बन जाएंगे और अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को अगर आप बनाए रखेंगे कि आई एम ओके, आई एम फाइन, एंड एक बहुत अच्छा थॉट ये है कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर हम इसको मान के चलते जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमारे मन में ना कुछ अनिश्चितता है, अनसर्टिनिटी है, व्हाट नेक्स्ट। लेकिन आप सोचिए नहीं, ये ऐसे ही नहीं रहेगा, ये दिन भी बदल जाएंगे। लेकिन मन के अंदर सभी के लिए जो मन में बहुत सारी परेशानियां हैं उसको परमात्मा के सामने रख दीजिए और जो भी आपकी तैयारियां हैं, आप कुछ अपने प्रोफेशंस की बुक्स स्टडी कर दीजिए, केस स्टडी कीजिए या किसी को गाइड कीजिए और आपके आगे वाले दिन बहुत सुनहरे होंगे, ये नो डाउट है। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि ये एक सरप्राइज है गॉड का और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आने वाला कल बहुत सुंदर सुनहरा होगा। इसलिए अनिश्चितता का भय अपने अंदर बिल्कुल नहीं रखिए क्योंकि कल का सवेरा नजदीक ही है, ये मान के चलिए
जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। एक और व्यूअर हमारे साथ हैं, देविका दत्ता नाम है इनका और ये यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं और ये प्रश्न पूछते हैं, ड्रामा बहुत हार्ड है, मैं समझता हूँ ये मेडिटेशन को प्रैक्टिस करती हैं और जो ये लाइफ का ड्रामा है, जो ड्रामा साइकिल है, जो इस संसार के ग्रेटर ड्रामा को हम देखते हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत हार्ड है। एट द स्टेज ऑफ 20 ईयर्स स्ट्रगलिंग टिल नाउ, 20 साल की उम्र से लेके अब तक ये स्ट्रगल कर रही हैं इस बात को लेकर। वो कहते हैं हम आई एम अ रिटायर्ड टीचर, प्लीज एडवाइज मी, ऐसा ये पूछते हैं देविका जी।
ये ड्रामा देखने का हमारा नजर कैसा है देविका बहन, ऐसे हमको लगता है हाँ होगा, हार्ड जरूर होगा, लेकिन हार्ड होने के बावजूद भी ये ड्रामा बहुत वंडरफुल है, और जो है जैसा है उसको स्वीकार करना ही तो लाइफ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए बताना चाहूंगी जो मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा था, शायद आपने भी पढ़ा होगा, है ना। सवेरे सवेरे बार्बर शॉप में, नाई की शॉप में एक बुजुर्ग आदमी पहुंचते हैं, उनके सिर पर केवल 8 बाल होते हैं, और वहां जाके उनसे कहते हैं ये बुजुर्ग आदमी, कहते कि जाके बैठ जाते तो नाई या बार्बर को बहुत गुस्सा आता है, सवेरे सवेरे एक ऐसा व्यक्ति आ गया, तो वो कहते हैं कि क्या करना है मुझे, काउंट करना है या कट करना है ये बाल जो बचे हैं। तो वो बुजुर्ग बहुत मुस्कुराते हुए कहते हैं कट भी नहीं करना, काउंट भी नहीं करना, लेकिन कलर करना है मेरे बालों को। कितने बाल थे? केवल 8 थे, लेकिन उनके अंदर जीने की जज्बा देखिए आप। वो सोचता है जो भी है ना उसको रंगना है। ये बुजुर्ग आदमी के अंदर जो जीने की जज्बा है ना, अगर हम इसे स्वीकार कर लेंगे, जिंदगी हमें हार्ड लगती है। आपने कभी वाटरफॉल देखा होगा, कितने हजारों फीट, हजारों मीटर के ऊपर से पानी गिरता है, पानी गिरता है तो हार्ड है, लेकिन देखने वालों को कितना एंजॉयमेंट है, एनर्जी कितनी कंज्यूम हो, एनर्जी कितनी प्रोडक्शन हो जाती है वहां पर वाटरफॉल्स में, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसे जिंदगी जितनी भी हार्ड क्यों ना हो लेकिन सुंदर है, ऐसे मान के चलेंगे ना कभी बोर नहीं होंगे, और ड्रामा को सदैव ईश्वर की रची हुई इस ड्रामा को स्वीकार करने की एक मनोदशा बना लीजिए, नॉट क्वेश्चनिंग, ठीक है ना, तब हम खुश रह सकते हैं।
जी, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया दीदी कि हम लाइफ को रंगने के बारे में सोचें, जो हमारे पास है उस चीज को हम पॉजिटिवली अगर एक्सपीरियंस करने के बारे में सोचें तो बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं, वो जज्बा होना चाहिए। अगला प्रश्न, राजकुमार जी हमारे साथ हैं, फेसबुक से ये जुड़े हैं, राजकुमार कलसेन नाम है इनका, और ये पूछते हैं विच लैंग्वेज आर सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स, कैन यू एक्सप्लेन इट, कहते हैं। वो पूछते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो किस भाषा को समझता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करें, ऐसा राजकुमार जी पूछते हैं।
हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, राजकुमार भाई जी आपका नाम बहुत सुंदर है, आप है ही राजकुमार, तो आप तो अपने संकल्पों के, अपने इंद्रियों के, अपने विचारों के भी राजा जरूर होंगे। ये मानते हुए मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ये संकल्पों की भाषा जानता है, संकल्पों के लिए कोई भाषा नहीं होते। हम जिस भाषा में बात करते शायद हम सोचते यही भाषा में हम सोचते हैं, लेकिन संकल्पों की अपनी कोई भाषा नहीं होती, सेपरेट भाषा नहीं होती है, लेकिन संकल्प एक मन की रचना है, उसको हम फिर जब शब्दों में डालते हैं या लिखते हैं तो हम उसको कोई भाषा का नाम दे देते हैं। तो संकल्पों की भाषा है बहुत प्योर, बहुत प्यार भरा संकल्पों की भाषा है। तो जितना संकल्पों में प्यार होगा, जितना संकल्प सुखद होंगे, जितने हम संकल्पों में शीतलता लाएंगे, उतनी हमारी संकल्पों की भाषा सुंदर और बहुत ही सुशील दिखाई देगा। इसलिए संकल्पों की भाषा अपनी भाषा है, आप जैसे भी संकल्प करेंगे, जिस भी भाषा में संकल्प करेंगे, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा भगवान के पास भी पहुंचता है और अपने अंदर भी पहुंच जाता है। इसलिए भाषा के बारे में चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि जब हम मौन हो जाते हैं ना, कोई भाषा नहीं रहती है वहां पर, ठीक है
जी। बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। अगला प्रश्न हमारे साथ विशन यादव पूछते हैं, विशन जी हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं, वहां पर प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। वो कहते हैं मेडिटेशन करने का सबसे सरल तरीका क्या है, ये पूछते हैं।
हाँ जी भाई जी, आपका ये प्रश्न सभी के लिए आज के जमाने में तो बहुत जरूरी है। आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन बताऊं मेडिटेशन का, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन, ठीक है। थोड़ा भी तनाव नहीं रखिए, अपने ऊपर थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, जैसे हम अपने कपड़े के लिए अटेंशन देते, खाने के लिए अटेंशन देते, सोने के लिए अटेंशन देते, फोन के लिए अटेंशन देते हैं, इसी तरह अपने मन के लिए, अंतर की अंतर का जो जर्नी है उसके लिए थोड़ा सा अटेंशन देना है, और सहज तरीका है अपने आप से बातें करना। यहाँ पर मैं जरूर बताना चाहूंगी, मेडिटेशन का बहुत सरल तरीका मैंने सीखा है ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से, जिसको सहज राजयोग कहते हैं। कोई आसन नहीं है, कोई ऐसी फिजिकल कंडीशंस नहीं है, चलते फिरते खाते उठते बैठते सोते भी आप भगवान को याद कर सकते हैं। ये सरल तरीका अगर आप सीख लेंगे तो आपका ये जो मन है या मेडिटेशन सीखने की जो इच्छा है वो सत्य में संतुष्टता को आप प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए ये बहुत सरल तरीका है सहज राजयोग, जो खुद को और भगवान को, खुदा को जोड़ने का एक सरल माध्यम है।
ये जो आप अभी बात कह रहे थे दीदी, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न हमारे दोस्त पूछते हैं। नीरज नाम है इनका और नीरज मेहर YouTube पे प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। वो पूछते हैं, इज राजयोग मेडिटेशन अलोन सफिशिएंट और वी हैव टू चैंट होली नेम्स ऑफ गॉड एज वेल? शुड आई अवॉइड पूजा एंड अदर थिंग्स? ऐसा ये पूछते हैं नीरज
जी।
हाँ
नीरज, जो कीचड़ से खिलता है उसी को नीरज कहते हैं। बहुत अच्छा भाई साहब आपने सत्य प्रश्न पूछा कि देखिए राजयोग का, जब हम राजयोग कर आते हैं या सिखाते हैं तो एक अच्छी बात सभी को बताते हैं कि यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है, यहाँ कुछ तोड़ना नहीं है, केवल जोड़ना है। इसलिए पहले आप पूजा पाठ छोड़ने की या कोई भी विधि आप कर रहे हो उसे छोड़ने के बारे में सोचिए ही नहीं, लेकिन आप जरा इसके बारे में सोचिए, जब आप चैंटिंग करते हैं, जाप करते हैं, तो क्या आप भगवान से जुड़ते हैं? अपने आप से प्रश्न कीजिए। और अगर जुड़ते नहीं है वो क्या हो गया? केवल एक अभ्यास मात्र हम करते आए। इसके लिए थोड़ा सा मन भगवान से जुड़े, मैं खुद भगवान से जुड़ूं, इसके लिए राजयोग आपको बहुत सरल विधि सिखाती है। हाँ, आप अपने फुर्सत के समय पर भले चैंटिंग करें या भजन करें, कोई इसमें एतराज नहीं है, लेकिन चैंटिंग करते समय भी अगर आपका मन भगवान से जुड़ा हुआ रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय आप कह रहे हैं लेकिन आपके सामने शिव भी नहीं आ रहा है, ओम माना मैं आत्मा भगवान को नमस्कार कर रही हूँ ये भावना भी नहीं आ रही है, तो इस चैंटिंग का क्या मतलब? ओनली काउंटिंग रिमेन्स नो, 108,008 चैंटिंग मैंने किया, इससे फायदा नहीं है। फायदा उसमें है अगर आप चैंटिंग करते वक्त भी भगवान से जुड़ जाते हैं मन से, देन इट इज वेरी ब्यूटिफुल। इसलिए हम राजयोग में, जैसे कि भगवान शांति का सागर है, हम शांति के महसूस न करते हैं। भगवान आनंद का सागर है तो हम आनंद की महसूस न करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है तो अंदरूनी शक्ति की हम महसूसता करते हैं, ये जरूरी है। इसलिए मना किस चीज की भी नहीं है, लेकिन अपने अंदर एक नवीनता लाने के अभ्यास की जरूरत है।
हमारे साथ एक और दोस्त हैं, फेसबुक से सूर्या जी जुड़े हैं, सूर्या रॉथ नाम है इनका, और ये पूछती हैं कि दीदी When our family relationship is happy and there is no misunderstanding with each other, 7 years and no communication, please advise. वो कहते हैं कि भाई हमारे साथ हमारे फैमिली तो बहुत ही खुशहाल है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मगर फिर भी 7 साल होने के बावजूद भी हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है। ऐसा भी कभी ऐसा इनके साथ हुआ है, ऐसा ये कहते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है बट फिर भी 7 साल से कोई बातचीत नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा पूछते हैं।
सूर्य जी, ये तो एक दुविधा है आपने जो प्रश्न पूछा। आप कहते कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, खुशहाल फैमिली है, फिर क्यों कम्युनिकेशन नहीं है? अगर नहीं है तो आप शुरू कीजिए ना, उस तरफ से नहीं है तो आप शुरू कीजिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर हमारे अंदर ईगो आड़े आता है कि मैं क्यों पहले करूं, इसको बाजू में रख दीजिए, क्योंकि फैमिली में कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, फैमिली सिर्फ एक समान होते हैं, जिसे पांचों उंगली छोटा बड़ा मोटा हम कहने की मात्र है, लेकिन हर एक की जरूरत समय पर ही होता है। इसी तरह फैमिली में अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप आगे चलकर आप पहल कीजिए, आप बात कीजिए, शुरू कीजिए कम्युनिकेशन। और साथ साथ हमारी बहुत बड़ी फैमिली है भगवान से जुड़ी हुई, उस भगवान के साथ भी अपना कम्युनिकेशन ठीक रखिए। इधर कम्युनिकेशन ठीक होगा ना तो इधर कम्युनिकेशन अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले आप पहल कीजिए। अभिमान को बाजू में रख दीजिए, ठीक है?
जी, बहुत ही सुंदर बात आपने कही दीदी कि हम बहुत बार एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला कोशिश करे, वहां से कोई बात आगे बढ़े, बट हम भी तो वो शुरुआत कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज आपने कही। देवव्रती हमारे साथ जुड़े हैं, देवव्रती फेसबुक से हमारे साथ लाइव देख रहे हैं कार्यक्रम को। एक यंग फ्रेंड है हमारे और वो पूछते हैं कि इज देर एनी रिलेशन बिटवीन फूड एंड थॉट्स, हाउ कैन वी कंट्रोल आवर माइंड। ऐसे ये दो प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि जो भोजन हम करते हैं और जो हम खाना खाते हैं उसके बीच में कनेक्शन क्या है, और दूसरा हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, ये प्रश्न है।
जिन्होंने प्रश्न पूछा यंग फ्रेंड, बहुत अच्छी प्रश्न है ये कि आजकल की दुनिया में खाने का कंट्रोल ही नहीं रहा है, है ना? फूड हमारे जीवन के केवल न्यूट्रिशन ही कंप्लीट नहीं करता है, लेकिन जैसा अन्न वैसा मन मानते हैं। अन्न अगर हमारा ठीक होगा तो मन ठीक होगा ही, ये पक्का है। लेकिन आजकल हमारा खाने के लिए कोई टाइम नहीं है और सीजन वाइज फूड नहीं है, और खाने के समय हमारे विचार कैसे होने चाहिए उसका भी हम कोई कंट्रोल नहीं करते। कहीं भी खड़े होके कुछ भी हम खा लेते हैं, और जिन्होंने बनाया, जैसा बनाया, जिस विचार से हमने खाया उसका पूरा असर हमारे ऊपर होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको दुनिया में मिल जाते हैं, अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव मन पर होता है। इसलिए कहते हैं हर एक व्यक्ति के दिल का दरवाजा पेट से जाके खुलता है। मतलब अगर पेट में शुद्ध अन्न, सात्विक अन्न या अच्छी तरीके के विचार से खाया हुआ अन्न, आपने पूछा फूड का और खाने की विधि का, दोनों का बहुत बहुत प्रभाव है। इसलिए खाते समय इधर उधर का विचार न करें, व्यर्थ विचार ना करें, बुरे विचार ना करें, टीवी आदि देखते हुए, गंदे या क्रूयल सीन्स देखते हुए हम कभी हमारा आहार स्वीकार न करें, क्योंकि जैसा विचार होता है और जैसा आहार अन्न जैसा होता है उसी अनुसार हमारा व्यवहार होता है। अगर हम व्यवहार में शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, दूसरे के साथ हमारा कम्युनिकेशन ठीक चाहते हैं, तो पहले बनाते समय, खाते समय, खिलाते समय हमारा ध्यान भगवान के साथ हो, हंसते हंसाते खुशी खुशी अच्छी तरह से हम खाना खाएं, और जितना हो सके हम जो प्रिजर्वेटिव्स के खाना है वो सभी खाना अवॉइड करें, फ्रेश खाना खाएं, जिससे मन भी फ्रेश, तन भी फ्रेश रहता। दूसरा क्या प्रश्न था?
दूसरा प्रश्न था कि मन को कंट्रोल कैसे करें, माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए।
बहन जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मन को कंट्रोल नहीं कीजिए आप कभी, लेकिन आप अपने मन को मैनेज कीजिए। मन आपका मित्र है, मन को दबाना बिल्कुल नहीं है। मन तब खुश होगा या मन को हम तब खुश रख सकेंगे, एक तो अन्न की बात बताई, दूसरे विचार जो है, विचारों का भी प्रभाव होता है, विजुलाइजेशंस का भी प्रभाव होता है। तो मन को अच्छी तरह से रखने के लिए मन में जो विचार आते हैं आने दीजिए, लेकिन जो विचार आते हैं उसको फिल्टर करना भी सीखिए। और हम ज्यादातर नेगेटिव विचारों का रिपीटेशंस करते हैं, नेगेटिव्स को रिपीटेशन करते हैं, जैसे कि कोरोना की डाटा है, इतने लोग मरे, इतने लोग संक्रमित हुए, ये बार बार हम सोचते हैं तो हमारा मन घबरा जाता है। इसलिए मन को खुश रखने के लिए बुरे विचारों को, नेगेटिव विचारों की रिपीटेशन स्टॉप करेंगे हम, और मन को भगवान में रखेंगे, मन मनाभव करेंगे। मन जब भगवान, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर से जुड़ेगा तो मन अपने आप खुश रहेगा। लेकिन हम जोड़ते किस चीजों से जोड़ते, पैसों से जोड़ते, व्यक्तियों से जोड़ते हैं, घटनाओं से जोड़ते हैं, टीवी से जोड़ते हैं, इसके कारण मन बहुत परेशान है। इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, मतलब इसको हम पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं अपने मन को थोड़ा थोड़ा अच्छे विचारों में लगाए, थोड़ा भगवान में लगाए, थोड़ा क्रिएटिव विषयों में लगाए, तब मन खुश रह सकता है।
जी, जैसे मन के बारे में आप बात कह रहे थे, एक और दोस्त हमारे मन से ही जुड़ा हुआ प्रश्न पूछते हैं। फेसबुक पे हमारे साथ प्रशांत कुमार जुड़े हैं और प्रशांत जी का प्रश्न है कि ओम शांति दीदी जी, माय क्वेश्चन इज माइंड को कंस्ट्रक्टिव कैसे कर सकते हैं, ऐसा पूछते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कंस्ट्रक्टिव चीजें नहीं होती, हम या तो नेगेटिव सोचते हैं या फिर कुछ अच्छी चीजें हम अपने मन के अंदर पॉजिटिव बिल्ड करें, कंस्ट्रक्टिव हो माइंड, उसे कैसे किया जा सकता है, ऐसे प्रशांत पूछते हैं। प्रशांत नाम है
जी। मन अनेक तरह से सोचता है प्रशांत भाई, आप जो प्रश्न पूछे, मन में सोच तो चलता ही है। सर फैकल्टी क्या है इसका? फैकल्टी है मन को, मन का काम है सोचना। इसलिए मन में अगर नेगेटिव आता है या वेस्ट आता है तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं, आना कॉमन है। लेकिन मन में अगर जितना ज्यादा हम प्रैक्टिकली सोचते जाएंगे पॉजिटिव के साथ, प्रैक्टिकली पीसफुली पर्पसफुली सोचते जाएंगे, मन कंस्ट्रक्टिव बढ़ता जाएगा। ये मेरा विचार जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये कहीं से पड़ी हुई है लेकिन बहुत अच्छी चीज है, भगवान ने हमें ये सिखाया है। केवल पॉजिटिव 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 के साथ, इट मस्ट बी पीसफुल, इट मस्ट बी पर्पसफुल एंड इट मस्ट बी प्रैक्टिकल। और जो मन में नेगेटिविटी आती है इसको आप थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ये जो विचार है ना, ये विचार बार बार करने से ही हमारे आदत बन जाते हैं। आपने कंस्ट्रक्टिव के बारे में पूछ कहा कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, है ना, खुदाई करते हैं, स्थूल में भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कितनी मजबूत करते हैं उसके। इसी तरह हम अपने अंदर अच्छे विचारों के, सच्चे विचारों को बार बार लाने का अभ्यास करें, एक रूटीन बनाएं। नेगेटिविटी जो अगर आती है तो उसको बाजू करें, अनदेखा करें, निकाल के रखें और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का संस्कार बना ले अपने अंदर। तब देखिए आपके अंदर कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, अगर हमारे अंदर कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव थॉट्स आते रहेंगे तो हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो अगर मन से हमें सदा खुशहाल रहना है, यंग रहना है, तो कभी भी मन के अंदर नेगेटिविटी को रहने नहीं देना है, आते ही उसको सरका देना है, तभी हम प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्टिव बन सकते हैं।
दीदी, ये जो बात आपने कही वो बहुत ही अच्छी चीज है और मेडिटेशन से जुड़े हुए दो तीन दोस्तों के सवाल हैं। एक तो राजीव रॉय हैं हमारे साथ, वो फेसबुक से जुड़े हैं और लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और वो पूछते हैं, आई बिलीव वन कैन ट्रांसफॉर्म योर नेगेटिव सिचुएशंस विद मेडिटेशन एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस। आई गेट गुड रिजल्ट्स फॉर श्योर, बट हाउ टू गेट गुड रिजल्ट्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। राजीव जी कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने नेगेटिव सिचुएशंस को मेडिटेशन से और सकारात्मक अफर्मेशन से बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और वो करने से अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं फॉर श्योर, बट हमेशा अच्छे रिजल्ट्स कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलते रहे उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसा राजीव पूछते हैं।
हाँ राजीव जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक बात मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, जिंदगी में अच्छे रिजल्ट्स के साथ अगर कभी रिजल्ट्स ना आए तो उसे भी स्वीकार करने की एक मनोबल को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला कदम अगर हमारा स्लिप होता है तो हम दृढ़ता से दूसरा कदम ले सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, जैसे मेडिटेशन से हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेडिटेशन को बढ़ाते जाए हम, और बढ़ाते जाए, उसमें डीपनेस लाना चाहिए, मेडिटेशन में डीपनेस आए हमारे, है ना, ऊपर ऊपर ही तरीके से नहीं। अगर हम गहराई से मेडिटेशन का अभ्यास करें, और मेडिटेशन का रिजल्ट केवल बाह्य सफलता नहीं है, कोई घटना में, कोई सिचुएशंस में हमें सफलता मिल गई, इतना ही नहीं, कोई भी परिस्थिति में हमारा मन घबराए नहीं, हम अंदर से हिले नहीं, ऐसी स्थिति अगर हम पालेंगे तो सामने कैसे भी परिस्थिति होगी हम उसे संभाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, हम मेडिटेशन को क्या करते हैं, एक समझे जरूरत आई, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया, फिर सब सामान्य हो गया तो हम मेडिटेशन छोड़ देते, ऐसे नहीं। जो निरंतर अभ्यास की जरूरत है मेडिटेशन को, जैसे कि खाना पीना सोना और ऑक्सीजन लेना, या हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है या ब्रीदिंग ब्रीद आउट है, ये जैसे नॉर्मल है, इसी तरह मेडिटेशन हमारे जीवन जीने की कला बन जाए। उठते बैठते हम भगवान को याद करें, बाहर जाते समय भगवान को साथ लेके चले, हर घड़ी हम भगवान को साथ लेके रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति आए तो हम भगवान को साथ पाते हुए उसको फेस भी कर सकते हैं और सफलता भी पा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि मेडिटेशन को और गहराई से निरंतरता से हम अभ्यास करें।
बहुत ही अच्छी बात आपने बताई दीदी कि मेडिटेशन को भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस बना के रखना है, कि सिर्फ थोड़ा टाइम किया फिर छोड़ दिया, ऐसे करने से वो कंटिन्यूटी में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। मेडिटेशन से जुड़ा एक और प्रश्न है, मेघा हमारे साथ जुड़े हैं, मेघा सहवाग नाम है इनका, और मेघा जी फेसबुक से जुड़े हैं। वो पूछते हैं क्या मेडिटेशन करते हुए हमें ईश्वर की अनुभूति होती है, अगर होती है तो किस रूप में होती है, ऐसा मेघा पूछते हैं।
मेघा जी, यहाँ पर हम बहुत बारिश हो रही है, आपकी याद इस आपके नाम से और बारिश की तरफ प्यार ज्यादा हो गया, बहुत अच्छी बात। ईश्वर की अनुभूति होती है तब तो मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन केवल हमारे काम निभाने के लिए या परिस्थितियों के सामना करने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए नहीं है। जिंदगी का लक्ष्य क्या है, जब हम इस जिंदगी की अनुभूति कर रहे हैं तो जिसने जिंदगी दी है, जिसने दुनिया रची है, उसका अनुभव, उसके साथ का अनुभव करना भी तो जरूरी है ना। जितने प्यार से हम मेडिटेशन करते जाएंगे, जितने अंदर से हम चाहेंगे कि भगवान को हम याद करते करते उसकी महसूस ना करें, है ना। इन आंखों से तो हम भगवान को देख नहीं सकते, ये पक्का है, क्योंकि उनको हमारे जैसा शरीर तो है नहीं, तो हम उसको कैसे देखेंगे अंदर की आंख से, इसको तीसरा नेत्र कहते हैं, ज्ञान नेत्र, है ना। ज्ञान के माध्यम से, राजयोग के अभ्यास से लाखों लोगों ने घर बैठे भी भगवान की महसूसता की है। भगवान हमारे साथ है, इसके कितने सारे लाखों एग्जाम्पल्स हमें मिल सकते हैं। इसलिए आप भी मेडिटेशन जारी रखिए, अगर कर रहे हैं, अगर नहीं है तो अच्छी तरह से सीखिए, और अवश्य आपको भगवान आपके साथ है इसकी महसूसता जल्दी हो जाएगी, ये हम आशा रखते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी उन ब्लेसिंग्स के लिए। अगला प्रश्न एक और फ्रेंड है हमारे जो फेसबुक से जुड़े हैं, नाम है इनका आदित्य गुप्ता। आदित्य जी प्रश्न पूछते हैं कि मैं किसी से सिर्फ चार महीने के लिए बहुत ही स्ट्रांगली इमोशनली अटैच हो गया था, बट अब हमारी बात तक नहीं होती है, मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, प्लीज गाइड, ऐसा कहते हैं। मैं समझता हूँ आदित्य जी के इस प्रश्न के साथ मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे ऐसे यंग फ्रेंड्स हैं जो पिछले चार महीने में, जब लॉकडाउन बहुत ज्यादा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, क्योंकि हम साथ में मिल नहीं पाते थे, तो बहुत सारे कुछ दोस्तों ने कोशिशें ये की, कुछ लोगों ने ऑनलाइन किसी से दोस्ती की, कुछ लोग किसी से फोन पे बात करते थे, तो इमोशनल अटैचमेंट हो गया उनसे। और आप क्योंकि चीजें नॉर्मल होने लगी हैं, तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि अब बात नहीं हो पाती है तो लोग उन्हीं के बारे में सोचते रह जाते हैं, तो बहुत ही एक इमोशनल डिस्कनेक्ट सा महसूस होता है। तो आदित्य जी भी उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछते हैं, प्लीज गाइड करें।
जी आदित्य जी, जीवन का नाम है परिवर्तन। एकदम जो चलता जीवन रुक गया था कोरोना के कारण, तब हम लोगों ने कुछ अपने ढंग से उसको चलाना शुरू किया था। जीना तो है ही, तो खुशी से जिए, इसलिए एक नए दोस्त बना लिए, क्योंकि काम में नहीं जा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, तो शायद फ्रेंडशिप बन गया। अभी हर कोई अपने नॉर्मल जिम में वापस लौटा तो शायद फुर्सत भी नहीं मिल रहा होगा किसी को, या फिर वहां दूसरे नए बन रहे होंगे। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, पहले माँ से प्यार करता है, धीरे धीरे पापा से करता है, बाद में जैसे बड़ा होता है अपने फ्रेंड से जुड़ जाता है, ऐसे बदलता हुआ, मानव स्वभाव ही ऐसे है ना। तो ये जो बदलाव या परिवर्तन मानव स्वभाव में है, इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जिनके साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरह से हो गया था, आपको उनसे कुछ अच्छा अनुभव हुआ होगा, स्नेह का, अपना अपनेपन का, फ्रेंडशिप का, बहुत अच्छी भावनात्मक अनुभूतियां आपने की होगी। तो उन अच्छी यादों को साथ में रखते हुए वो जो आपका फ्रेंड बन गया था या जो आपका दोस्त बन गया था, साथी बन गया था, वो कहाँ भी है, अच्छा रहे, सुखी रहे, इन भावनाओं को अगर अपने आप अपने अंदर आने देंगे तो वो भी जहां है वहां सुखी रहेगा। तो आपकी ये जो सकारात्मक शक्तिशाली सोच के कारण और आगे उनका मिलना भी हो जाएगा, फिर ऑनलाइन या कहां भी। अगर आप उन्हीं के बारे में चिंतित रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, तो इसके कारण आपका टेंशन बढ़ सकता है और आपकी चिंता का वाइब्रेशन उन तक भी पहुंच जाएगा, फिर शायद और दूरियां बढ़ जाए। इसलिए मेडिटेशन के एक पार्ट है हम सभी के बारे में अच्छा सोचें और जो हुआ, जो यादें हमारे साथ हैं, उन यादों को हम अच्छी तरह हमारे अंदर समाये रखें, उन यादों को हम कभी भी हमारे वीकनेस नहीं बनने दें। ये जो यादें हुई थी, जो भावनात्मक हमारी बॉन्डेज हो गई थी, उसको हम एक ताकत बनाए, स्ट्रेंथ बनाए, ना कि वीकनेस। जब आप ऐसे सोचेंगे ना तो ये स्ट्रेंथ आपका जो बढ़ेगा वो सामने वाले को भी एक स्ट्रेंथ की महसूसता देगा और आपकी जिंदगी के रास्ते में और भी अच्छे लोग जुड़ जाए, है ना
जी। दीदी हमारे साथ एक और दोस्त हैं, विजय जाखर नाम है इनका। विजय जी यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी प्रश्न पूछते हैं कि मेडिटेशन के दौरान अफर्मेशन का क्या महत्व होता है, क्या नींद आना सही है, ऐसा ये पूछते हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारे दोस्त इस लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्सेस किया है बहुत सारे दोस्तों ने, तो उसमें वो अफर्मेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, इसका महत्व क्या है मेडिटेशन में, और मेडिटेशन के समय पर अगर क्या नींद आती है तो क्या वो सही है, ऐसा ही पूछते हैं विजय।
विजय भाई मेडिटेशन की शुरुआत में थोड़ा नींद आ जाती है, ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है या कुछ गलती भी नहीं है, क्योंकि माइंड में या जो ब्रेन वेव्स है स्लो डाउन हो जाते हैं। ब्रेन वेव्स मेडिटेशन में अल्फा वेव से डेल्टा वेव्स तक हम चले जाते हैं, तभी क्या होता है ऑटोमेटिकली डेल्टा या अल्फा के बाद की जो वेव्स है थीटा बीटा, ये स्लोली हमें नींद की ओर ले जाते हैं। अगर मेडिटेशन की गहराइयों में हम चले जाते हैं तो बहुत अच्छी अनुभूतियां हम कर सकते हैं, लेकिन हमें आदत नहीं है, इसके कारण ब्रेन स्लोली 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 क्या कर देता है, सुला देता है, इसलिए हम सो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम मेडिटेशन में कॉमेंट्रीज यूज करते हैं या गीतों को यूज करते हैं, ताकि स्टार्टिंग में अगर हमें कोई ऐसी ड्रोजनेस अनुभव हो तो हमें जगाए। ठीक है, और दूसरा अफर्मेशन की क्या जरूरी है या अफर्मेशन का क्या पार्ट है, यूं ही अगर आपको किसी ने कह दिया कि आप सुंदर हो, लेकिन आपके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि मैं सुंदर हूं, लेकिन अगर कोई 10 बार कहते हैं नहीं नहीं यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी, आप बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, जब वो बात है ना एक बार आपके मन में छप जाती है, बाद में उसको कोई हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। जैसे कि आपको पता है कि पहले ब्लैक लोगों को वर्णभेद नीति के तहत बहुत कम अंक देते ना, लेकिन जब एक लेडी ने शुरू किया ब्लैक इज ब्यूटी, आपको पता है वो बहुत बड़ी क्रांति बन गई, शी अनाउंस ब्लैक इज ब्यूटी, उसके बाद ब्लैक इज ब्यूटी क्या सारी दुनिया में छा गए वो लोग। That is affirmation. Yes, I am a peaceful soul. That is affirmation. मैं tensioned हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ, ये सोच सोच करके इसी को हमने दृढ़ता से अपने मन में बिठा लिया था। इसको हटाने के लिए affirmation की जरूरत है, positive affirmation की जरूरत है। यही तो meditation का बहुत main role है हमारे जीवन में। इसलिए important क्या है कि हम अपने आप से बातें करना सीखें और दृढ़ता से बातें करें। कहते हैं ना मनोबलम महाबलम, इससे बढ़कर कोई बल नहीं है। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी चाहिए मन में, स्टेबिलिटी लाने के लिए अफर्मेशन की जरूरत है।
जी बहुत ही सुंदर उत्तर दिया दीदी। लगभग हम 45 मिनट के करीब पहुंच चुके हैं, 45 मिनट्स दोस्तों। हमारे पास लगभग 10 मिनट का समय और है, और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सवालों को ले सकूं, कुछ प्रश्नों को मैं क्लब करने की भी कोशिश करता हूं। पूजा सिसोदिया जी हमारे साथ हैं और पूजा जी प्रश्न पूछते हैं, दीदी जी, सामने वाले को नेगेटिव थॉट्स और टेंशन फ्री करना है तो कैसे करें, क्या गुड विशेस देनी चाहिए और सेल्फ कंट्रोल को कैसे करें बाय मेडिटेशन, ये पूछते हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव थॉट्स करता है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है तो उनको नेगेटिव थॉट्स से और टेंशन से फ्री कैसे कर सकते हैं हम, किस प्रकार की गुड विशेस देने हैं और सेल्फ कंट्रोल को कैसे प्रैक्टिस करें मेडिटेशन में, पूछते हैं पूजा।
पूजा बहन बहुत सहज सरलता से है इसका जवाब, अब चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए। लेकिन देखिए, सामने वाला बहुत टेंशन में है, पॉजिटिव के बदले नेगेटिव सोचता है, तो उसको देख देख के हमारे मन में क्या विचार चलते हैं, ये बहुत नेगेटिव सोचता है, ये बहुत टेंशन में रहता है, ऐसे ही सोचते हैं ना, इसी को बदलना है। उसको जैसे आप देखना चाहते हो वैसे उसके बारे में सोचो। जैसे कि छोटे बच्चे की बात कीजिए, ये मेरा बच्चा है ना बहुत शैतान है, हम हंसी कुड़ी में कह देते हैं कि ये शैतान है, बाद में शैतानी बन जाता है वो। आप ऐसे नहीं कहिए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है और मेरा बच्चा बहुत क्रिएटिव है। ऐसे आप सोचते रहेंगे तो बच्चे में भी बदलाव आएंगे, वो सामने वाला बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लेकिन सामने वाले को आप जिस रूप में देखना चाहते हैं उस रूप में उसको आप विजुलाइज कीजिए और उसी तरह सोचिए। नहीं, ये बहुत टेंशन वाला व्यक्ति है, ये बहुत नेगेटिव सोचता है, ऐसे सोच सोच के सामने वाला पहले ही नेगेटिव है, फिर आपका सोच भी उसमें मिल जाता है और नेगेटिव हो जाता है। सामने वाला पहले से ही वीक है, आप सोचते हो ये बहुत वीक है और वीक हो जाता है। सामने वाला पहले ही शैतान है, ये शैतान है, शैतान है कह कह के और शैतान बन जाता है। इसीलिए जैसे हम उसको देखना चाहते हैं वैसे हम उसके बारे में सोचें, है ना। जब भी वो सामने आता है इससे पॉजिटिव पर्सन, इसके अंदर जो विचार चलते हैं ये बहुत अच्छे हैं, एक स्टेबल पर्सन है, ये सकारात्मक सोच रखता है, ये बहुत अच्छा है, ऐसे सोचते रहिए आप, आपकी सोच उसको उस तक पहुंचता है और वो बदल जाता है। और व्यक्ति बड़ा होने के बाद ना, शब्दों से हम व्यक्ति को बदल नहीं सकते, हम बदल सकते हैं तो अपने विचारों से, और विचार शब्दों से पहले व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, ये हमें याद रखना है।
जी, बहुत ही सुंदर बात आपने कही दीदी कि हम व्यक्ति को ऐसे नहीं बदल सकते, अगर हम किसी इंसान को बदलना चाहते हैं तो विचारों से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे आप छोटे बच्चों का एग्जाम्पल दे रहे थे उससे ही मिलता जुलता सवाल है। निशा भालानी हमारे साथ हैं, निशा यूट्यूब से लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम को, प्रश्न पूछते हैं, मेरा बच्चा 9 साल का है और वो बहुत चंचल है, समाधान में बताते हैं उस तरीके से, मैं 4 बजे मेडिटेशन में उसको गुड वाइब्रेशन सकाश देती हूँ, पानी चार्ज करके पिलाती हूँ, बहुत कुछ उन्होंने प्रयास किए हैं, बट वो बोलते हैं कि कैसे इस बच्चे की चंचलता को हम कम करें, ये पूछते हैं निशा।
निशा बहन, पहले आप चिंता करना छोड़ दीजिए, बच्चा 9 साल का है, 90 बरस का नहीं है, ठीक है। बच्चे ही शैतानी करते, चंचल होते हैं, ये आप स्वीकार कीजिए और आप मान के चलिए, थोड़ा मैच्योरिटी आने के बाद बच्चा जरूर बदलेगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे खुल के कहना चाहूंगी, बच्चे की चंचलता का कारण कहीं ना कहीं पेरेंट्स से जरूर है। जब बच्चे आपके गोद में थे या आपके कोख में थे तब आपके मन में कितने चंचलता के वाइब्रेशंस चले होंगे, उसका 100 गुना ज्यादा बच्चे में आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इसलिए मैं आप माँ हैं तो आप बच्चे को बदल सकती है। माँ बच्चे का एक टेलीपैथिकल बहुत वंडरफुल कनेक्शन होता है, जो अभी अभी मैंने पहले कहा कि आप ऐसे सोचना, आज के बाद आप कभी ये संकल्प नहीं करेंगी कि मेरा बच्चा चंचल है। आप सोचिए कि मेरे बच्चा बहुत कुछ करना चाहता है, मेरा बच्चा बहुत क्रिएटिव है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, यही वाइब्रेशन दीजिए, देते रहिए, देखिए बच्चा बदल जाता। कभी किसी के सामने ये शिकायत मत कीजिए कि मेरा बेटा चंचल है या मेरा बच्चा चंचल है, ये बात कह कह कर आपने चंचलता का वाइब्रेशन उस तक पहुंचाया, जिसके फलस्वरूप बच्चा और चंचल हो गया है। तो पहले अपने विचारों में सुधार लाने का प्रयास करेंगी मेरी बहन, ये मेरी आपसे आशा है।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही, बहुत सारे लोगों के लिए नई बात लग सकती है कि पेरेंट्स कितना रिस्पॉन्सिबल है बच्चों के कैरेक्टर में बिल्ड करने में कि आज बच्चे कैसे हैं उसके लिए। और अगर आप ये पॉजिटिवली कहना शुरू करेंगे तो फिर बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है। एक और हमारे यंग फ्रेंड है, रविंद्र सिंह नाम है इनका, और ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं और ये फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। प्रश्न पूछते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है दीदी, मैं मेडिटेशन भी करता हूं और रिसेंटली मैंने एक प्रीके सेंटर भी ज्वाइन किया हुआ है, ऐसा ये प्रश्न पूछते हैं। मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं दीदी, रविंद्र जी की बात के साथ ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आज नींद नहीं आने के प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। और पिछले दिनों न्यूज़पेपर में एक बहुत ही सुंदर सी रिपोर्ट आई थी और उसमें ये देखा गया कि ये जो जनरेशन अभी का है, मिलेनियल्स जो है, यंग वर्कफोर्स है, उसमें से लगभग 40% ऐसे हैं जो स्लीप डिप्राइव्ड हैं, जो नींद नहीं आने के कारण से समस्या को डील कर रहे हैं, उनको कुछ न कुछ मेडिकेशन लेना पड़ रहा है। तो एक सही में बड़ी समस्या है, आप प्लीज गाइड करें हमारे यंग फ्रेंड्स।
जी भाई जी, बहुत अच्छी बात है, आप मेडिटेशन सेंटर के सेंटर ज्वाइन किए हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत है। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि आप रात सोते समय थोड़ा सा गर्म दूध पिएंगे और आपके पैर पानी में, गर्म पानी में, लुकवार्म वाटर में रख के थोड़ी 5-10 मिनट उसके बाद सोएंगे, या आप फिजिकली प्रैक्टिस करने का, जिससे आपको नींद आ सकती है। और साथ साथ आप बेड के लिए जब जाते हैं या सोने के लिए जाते हैं, उसके पहले बिल्कुल आप टीवी या आपकी जो सोशल नेटवर्किंग सिस्टम है, इससे आप डिटैच हो जाए। अगर डिटैच नहीं हुए बिना आप सोएंगे तो लास्ट में आपने जो काम किया होगा उसके कारण, आपको पता है जो भी डिजिटल हम यूज कर रहे हैं हमारे नींद के लिए दुश्मन है, ये पक्का है। और आप सोने के 1-2 घंटा पहले ही खाना खाने की आदत डाल लीजिए, जो बहुत जरूरी है नींद के लिए। और लास्ट में आपको मेडिटेशन में, जैसे आप बेड में लेटते हैं, आप अपने आप से ये बातें शेयर करना शुरू कर दीजिए या सेल्फ टॉक शुरू कीजिए। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम डिटैच्ड फ्रॉम दिस बॉडी, मैं इस शरीर से अलग आत्मा हूं। मैं आपको पक्का कह सकती हूं, अगर आप रियली मन से, दिल से ये सोचेंगे मैं एक आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं भगवान की गोद में सोने जा रहा हूँ, ऐसे सोच के 10-15 बार ये सोचेंगे तब तक आपको नींद आ जाए, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन आपको प्रैक्टिकली इसका अभ्यास बढ़ाना है और साथ में आप सोते समय सारी जो दिनचर्या है आपकी भगवान के सामने रखने का एक अभ्यास कीजिए। लेटर लिखिए या बातें कीजिए, दिन में अगर कुछ हो गया है, ये आपकी समस्या है, भगवान मुझे नींद नहीं आ रही है, आज आपकी गोद में मैं अच्छी तरह सोना चाहता हूँ, ये भी लिखिए। ऐसे करने से भी जितना हम अंदर से खाली होंगे ना, उतना हम अच्छी तरह सो भी सकेंगे, चैन की नींद भी आए।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि ये बहुत ही ऐसी सिंपल सी चीजें हैं जो हमें करने की आवश्यकता है। अगर इन चीजों को हम डे टू डे प्रैक्टिसेस में लाते हैं तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास ज्यादा प्रश्न नहीं है, बट मैं 2 प्रश्नों को एक साथ जोड़ के लेना चाहता हूं, दोनों रिलेटेड नहीं है फिर भी। एक प्रश्न है कि सुनीता देवी हमारे साथ हैं, YouTube से जुड़े हैं, वो कहते हैं, हालांकि इन्होंने प्रश्न नहीं पूछा है, ये शाउट आउट देती हैं, कहती हैं कि नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। और हमारे एक यंग फ्रेंड ने यह भी सवाल पूछा है कि वो जितेंद्र कुमार नाम है इनका, और वो कहते हैं कि दीदी जी माई माइंड इज ऑलवेज इन अ फियर स्टेट, वो डर के स्टेट में रहता है उनका माइंड, ऐसा ये प्रश्न पूछते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन और फियर से जुड़े हुए ये 2 प्रश्न हैं, एक जितेंद्र जी का भी ये प्रश्न है।
दोनों का प्रश्न रिलेटेड नहीं है, फिर भी रिलेटेड है। जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं होता है, जिसमें हमारी रुचि है उसमें तो कॉन्सेंट्रेशन हो ही जाती है। समझिए कोई सिनेमा देख रहे हैं जिसमें बहुत रुचि है तो हम खुद-खुद भूल जाते हैं, खाना भी वहीं छोड़ देते हैं, हमको याद भी नहीं रहता कितने घंटे हम बैठे रहे, हमें पानी पीने तक की याद नहीं रहती है। तो क्यों हमारी कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन में नहीं हो रही है, इसका कारण है हम अंदर से इंटरेस्ट पैदा करें, रुचि पैदा करें। क्योंकि मेडिटेशन बोरिंग नहीं है, मेडिटेशन सेल्फ टॉक ही नहीं है, इट इज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल कनेक्शन विद गॉड, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट क्या है कि जब हमारा कनेक्शन ठीक हो जाएगा भगवान के साथ, कॉन्सेंट्रेशन जब ठीक हो जाएगा, दूसरा प्रश्न क्या था, एक था कॉन्सेंट्रेशन
और दूसरा फियर के बारे में था दीदी।
हाँ, इम्पोर्टेंट मैं यही बता रही थी कि कॉन्सेंट्रेशन किस चीज में करना है हमें। अरे मैं तो कहती हूँ भगवान के साथ कॉन्सेंट्रेशन की क्या है बात है, क्या आप पापा के साथ बात करते हो तो यूं आंख घूरते हो क्या? नहीं, सिंपल सी प्यार से जुड़ जाते हैं, पापा कहते ही बस वो भूल जाते कहाँ खड़े हैं, फोन में घंटों घंटों बातें करते हैं। इसी तरह भगवान को संबंधों में जोड़ लीजिए, संबंधी बना लीजिए, तब कॉन्सेंट्रेशन तो क्या, हम दुनिया की सुदबुद्धि भूल जाते हैं, जो दुनिया में मीरा का गायन है हमने सुना है, कैसे सुदबुद्ध भूल जाती थी, कहाँ वो कॉन्सेंट्रेशन करके बैठती नहीं थी, लेकिन मन ऑटोमेटिकली एकाग्र हो जाता था। इसी तरह आज डर क्यों है हमें, कहीं ना कहीं हमें भविष्य के बारे में चिंता है। दुनिया में भविष्य के बारे में सोचने वाला एकमात्र जीव है मनुष्य, कोई पशु पक्षी सोचते नहीं है, देखिए कितने खुश रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्यूचर का प्लान ना करें, लेकिन फ्यूचर के बारे में हम चिंता करना छोड़ दें। इट्स ऑलरेडी प्लान ड्रामा, क्यों सोचे हम इसके बारे में, जो सामने आता है उसका आनंद लेते जाए। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ, हमारे ऊपर स्वयं भगवान का हाथ है, स्वयं भगवान की छत्र छाया के अंदर हम पल रहे हैं, भगवान हमारे साथी बनकर हर कदम में हमारे साथ चल रहे हैं, तो डर किस बात का? डर उसको होता है जो खुद भगवान से अलग हुए हैं या खुद से अलग हुए हैं। आज बहुत से लोग अपने आप से अलग हो गए हैं, वस्तुओं से व्यक्तियों से जुड़ गए हैं। इसलिए याद रखिए, जो चीज जहां रखेंगे ना वहीं रखेंगे तो उनकी बहुत मान्यता है, बाल सिर पर है तो शोभता है, अगर वही बाल खाने में आ गया तो खाना छोड़ देते हैं लोग। इसी तरह हमें परमात्मा के साथ प्यार रखना है, लेकिन हमने क्या किया, वस्तुओं के साथ व्यक्तियों के साथ प्यार रखना शुरू कर दिया, जिसके कारण डर पैदा हो गया हमारा। इसलिए प्यार परमात्मा के साथ रखिए, खुद पे भी रखिए, सेल्फ रेस्पेक्ट रखिए, और बहुत सारे जो हमारी वस्तुओं के साथ, पैसे के साथ, औहदे के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा बुद्धि हटाने के लिए जो शाश्वत है उसके साथ हमारा बुद्धि का योग शाश्वत रूप से जुड़ेगा तो डर अपने आप मिट जाएगा। हम कोई अकेले नहीं है, हमारे साथ स्वयं भगवान है, ये विश्वास से मैं कहती हूँ और अनुभव से कहती हूँ। जब हम एक कदम उठाते हैं ना तो हमारे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान भी हाथ उठाता है, सॉरी कदम उठाता है, तो हम क्यों डरे, किस बात के लिए डरे, सोचिए किस बात के लिए डरे, ये क्या मृत्यु के लिए डरे? अरे मृत्यु तो आनी ही है, डरो या प्यार करो, जिंदगी से जलना ही है, तो फिर जब चलना ही है तो क्यों नहीं जितना दिन है उतना दिन हम प्यार से रहे और अपने आप पे विश्वास से रहे और मान के चले मेरे सिर पे भगवान के छत्र छाया है। ठीक है ना?
बहुत ही अच्छी बात है दीदी, मैं समझता हूँ बहुत ही कम समय में हमने बहुत सारे दोस्तों के प्रश्न लिए हैं और बहुत सारे दोस्तों ने फीडबैक्स भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं और कुछ और भी प्रश्न हैं जो अभी अभी आए हैं, मैं उन सारे प्रश्नों को नहीं ले पाऊंगा दोस्तों, बट कोशिश यही रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लें। जाविया जी का प्रश्न आया है अभी अभी और सुनील धवन जी का प्रश्न आया है, अमरलाल जी का प्रश्न आया है, रेखा जी ने क्वेश्चन पूछा है। मैं इन दोस्तों को यही कहूंगा कि इन प्रश्नों को मैं कल के लिए सुरक्षित रख लेता हूं और कल के कार्यक्रम की शुरुआत में इन प्रश्नों को पूछने की छोटी सी कोशिश करूंगा। बट आज आप सब लोगों ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे हैं, ये पता चलता है कि आप इस बदलाव के समय में बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी कोशिशें कर रहे हैं अपने अंदर बदलाव करने के लिए, पॉजिटिविटी की तरफ कदम उठा रहे हैं, तो उन सबके लिए आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और आपके सभी प्रश्नों को हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमें आपके इस सफर में हम सफर बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज दीदी हमारे साथ जुड़े, खास मैं वीणा दीदी जी का धन्यवाद करता हूं कि दीदी आज आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, हमारे दोस्तों को समाधान दिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। मैं आपसे जी प्लीज,
मैं भी सभी हमारे भाई बहनों को जिन्होंने प्रश्न पूछा, शायद आपको समाधान मिला होगा, अगर नहीं मिला तो प्रयास करते रहिए, मिल जाएगा, कभी निराश नहीं होना है जीवन में, घर में रहिए लेकिन खुश रहिए, इन्हीं आशाओं के साथ आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद
जी। दीदी, अब मैं अगले 4-5 मिनट के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर मास्टर ऑफ मेडिटेशन जो हमारे साथ जुड़ता है वो हमें मेडिटेशन कराते हैं, और ये अच्छा ब्लेसिंग भी है क्योंकि आप सभी अकम्प्लिश्ड योगीज हैं और अनेकों दशकों से आपने मेडिटेशन की प्रैक्टिस की है, तो आपके प्रेजेंस में मेडिटेशन का मौका हमारे दोस्तों को भी मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट 3-4 मिनट के लिए आप हमें मेडिटेशन कराएं।
जी, ओम शांति। मेरे सभी भाई बहने जहां भी बैठे हैं, थोड़ा सीधे बैठेंगे और अपने मन को थोड़ा सा, 1 घंटे की इस सफर में हम आप साथ रहे, इस सफर को रिवाइज करते हुए अपने मन को कुछ गाइडेंस देंगे। जैसे मैं गाइडेंस बताती जाऊंगी उस तरह सोचने का आप प्रयास करेंगे। पहले पहले जीवनदाता भगवान का धन्यवाद करेंगे दिल से, साथ में माता पिता जिन्होंने जीवन दिया है, जन्म दिया है, उनका भी दिल से धन्यवाद करेंगे, साथ में मातृभूमि का भी धन्यवाद करेंगे। करते हुए अपने मन को भ्रुकुटी के बीच में लाने का छोटा सा अभ्यास करेंगे। पहले अपने आप को समझाएंगे, इतनी देर जो बातें सुन रहे थे, बातें कर रहे थे शरीर के माध्यम से। कहा जाता है शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, शरीर एक माध्यम है धर्म साधन करने का, लेकिन शरीर माध्यम से कर्म करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, इसकी महसूसता करेंगे। आंखों से देख रही हूं, कानों से सुन रही हूं, इस शरीर में रहते लेकिन बिल्कुल इस शरीर से अलग हूं। शरीर एक वस्त्र माफिक है, इस वस्त्र को धारण कर अद्भुत सृष्टि नाटक में अपना एक रोल प्ले कर रही हूं। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मेरा मूल स्वभाव शांति है, पवित्रता है, आनंद है। मैं चारों ओर शांति की प्रकंपन फैला रही हूं, आनंद के प्रकंपन फैला रही हूं, बहुत सुखद महसूसता कर रही हूं। चारों ओर मैं सकारात्मक ऊर्जा को फैला रही हूं, प्रकृति से, व्यक्तियों से मैं सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण भी कर रही हूं। इन आंखों से जिनको भी देखूंगी उन्हें पॉजिटिव एनर्जी ही पास करूंगी। मैं इस दुनिया के रचयिता जगत नियंता परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूं। उस परमपिता परमात्मा से मुझे शक्ति मिल रही है। आई एम रिसीविंग दैट पावर, यस, आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, मैं शक्तिशाली हो रही हूं, मेरे अंदर ताकत भर रहा है। मैं परमात्मा की याद से, प्रेम से संपन्न हो रही हूं, सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए परमात्मा की शक्ति को फैला रही हूं, पहुंचा रही हूं संकल्पों से। सभी खुश रहे, तंदुरुस्त स्वस्थ रहे, संतुष्ट रहे और सभी परमात्मा पिता की याद में शक्तिशाली बने, इन्हीं संकल्पों का प्रवाह फैला रही हूं मैं। शांत, बिल्कुल स्वीट साइलेंस में ओम शांति शांति शांति।